तो नूर की पोजीशन भी खराब हो जाएगी। रेहान कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और अंदर कहीं जलन भी, लेकिन उसने अपने भाव छिपाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल यही वजह है, आप बेफिक्र हो जाइए, आगे से हमारी लड़ाई नहीं होगी, अरमान बोला। रेहान हल्का सा हंसा, क्यों नहीं होगी, कोई डील हो गई है क्या? असल में रेहान के दिमाग में वही बात घूम रही थी। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक अरमान और नूर दोनों गायब थे। अरमान उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया। आपको तो हर बात में बिजनेस ही नजर आता है भाई, रेहान ने ठंडे लहजे में कहा। क्योंकि मुझे बिजनेस के अलावा कोई जबान आती ही नहीं, अरमान ने भी हंसकर कहा। तो फिर सही ही है। उधर फैजान नूर को छोड़कर घर लौट आया था। उसे अब जाने की तैयारी करनी थी। उसने अपने कमरे में रखे हुए पैसे ढूंढने शुरू किए, लेकिन पैसे गायब थे। उसने पूरा कमरा छान मारा, मगर कहीं नहीं मिले। तभी उसे शक हुआ और वो पास वाले सर्वेंट के कमरे में गया। मेरे कमरे में कोई आया था? फैजान ने पूछा। सर्वेंट बोला, हाँ बड़ी बेगम आई थी। असल में रेहाना बेगम ने उसे किताबें इधर उधर करते देख लिया था और उसके कमरे में आकर पैसे निकालकर ले गई थी। इधर अरमान में जुबैदा बेगम खड़ी थी। वो अरमान के कमरे की सफाई कर रही थी कि उन्हें साइड टेबल पर एक ज्वेलरी का पाउच मिला। उन्होंने उसे खोला तो अंदर एक बिल भी रखा था। बिल देखकर वो थोड़ी परेशान हो गई। पहले उन्होंने सोचा माहिरा से पूछें, मगर माहिरा से रात उसकी कहा सुनी हो गई थी, वो माहिरा से बात नहीं करना चाहती थी। फिर उन्हें याद आया कि अरमान और नूर अच्छे दोस्त हैं, शायद नूर को कुछ पता हो। उन्होंने नूर को फ़ोन किया। यूनिवर्सिटी से आने के बाद मुझसे मिलना, अरमान के बारे में कुछ पूछना है। ठीक है चाची जान, मैं आ जाऊंगी, नूर ने कहा। साथ ही जुबैदा बेगम ने नूर को कुछ भी अरमान को बताने से मना कर दिया था। तभी वहां फैजान आ गया। फैजान जुबैदा बेगम के पास आया, जो कमरे की सफाई करवा रही थी। चाची जान, आप मेरे कमरे में गई थी? फैजान ने पूछा। हाँ गई थी, मैंने पैसे रखे थे, क्या आपने लिए हैं? जुबैदा बेगम ने कहा। वो पैसे मेरे थे, तुम्हारे नहीं। और तुम्हें वो पैसे किस लिए चाहिए? फैजान ने पूछा। मैंने बताया था ना कि मुझे जाना है दोस्तों के साथ, आपने मेरा साथ देने का वादा भी किया था। प्लीज चाची जान, मुझे मेरे पैसे वापस कर दें, मुझे उन पैसों की बहुत जरूरत है, फैजान ने कहा। नहीं, वो पैसे मेरे थे, इसीलिए मैंने ले लिया। तुमने घर की ग्रॉसरी में से बचाए थे ना, क्योंकि तुम घर का सामान लेने जाते हो, पैसे कहाँ से आएंगे तुम्हारे पास? जुबैदा बेगम गुस्से से बोली। जुबैदा बेगम वहां से चली गई। फैजान वहीं खड़ा रह गया। परेशानी और गुस्से में वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अब क्या करें। घर का सामान लाने में से बचाए होंगे, चोरी के पैसे थे इसीलिए ले लिए, फैजान ने तुरंत कहा। नहीं चाची जान, वो मेरे पैसे थे, मुझे वापस चाहिए। मगर जुबैदा बेगम ने साफ इनकार कर दिया। तुम्हें जो करना है कर लो, पैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगी। फैजान के चेहरे पर अब बेचैनी और मजबूरी साफ दिख रही थी, क्योंकि उसे ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए उन पैसों की बहुत जरूरत थी। उधर अरमान ज्वेलरी का सेट ले आया था, जो रेहाना बेगम ने उसे कहा था। वो सेट देखते हैं और फिर रेहाना से कहते हैं, इसे जाते हुए सादिया के रूम में दे दो। उस समय माहिरा भी वहीं था, जो पहले से रेहाना बेगम के कमरे में आई हुई थी। मैं दे आती हूँ, उसने अरमान से कहा। वो जाने लगी। चलता हूँ ताई अम्मी, मैं भी चलता हूँ, नूर को यूनिवर्सिटी से लेने के लिए जाना है, अरमान ने कहा। इस बात को सुनकर रेहाना बेगम थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि सुबह ही उसने अरमान को मना किया था कि नूर से दूर रहे। आप परेशान मत होइए, भाई से बात हो गई है मेरी, उन्होंने ही कहा है, अरमान मुस्कुराकर बोला। रेहाना बेगम ने कहा, तुम लोगों को अगर भाई भाई ही खेलना था तो मुझे बीच में क्यों परेशान किया? अरमान मुस्कुराकर बोला, अब दोनों भाइयों में सुलह हो चुकी है तो हमने सोचा कि आपको तंग किया जाए। रेहाना बेगम भी मुस्कुराने लगी। माहिरा सादिया के कमरे में गई। शादी के वक्त उसका चेहरा फेस पैक लगाए हुआ था और वो ड्रेसिंग रूम में बैठी थी। उसकी आवाज़ सुनकर मैं ड्रेसिंग रूम से बाहर आया, यहाँ रख दो, उसने माहिरा से कहा। वो फिर वापस अपने कमरे में चली गई। माहिरा, जिसे सादिया से हमेशा से प्रॉब्लम रही थी, झुमके निकालकर बॉक्स में से बेड के नीचे फेंक देती है। इस वक्त फैजान आता है, वो माहिरा को देखता है। वो अंदर है, माहिरा ने फैजान से कहा, क्योंकि वो समझ गई थी कि फैजान सादिया से मिलने आया था और वो वहां से चली गई। सादिया, मुझे तुमसे बात करनी है, फैजान ने कहा। सादिया ने गुस्से में कहा, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं, और ड्रेसिंग रूम से उठकर बाहर चली गई। फैजान ने कहा, बैग उतार कर बाहर आ जाओ, हम दोनों बैठते हैं, मुझे बातें करनी है, मैं तुम्हारा भाई हूं। फैजान पहले से ही परेशान था, एक तो उसे ट्रेनिंग पर जाना था उसके पैसे चोरी हो चुके थे और अब सादिया उससे बात करने के लिए तैयार नहीं थी। वो सोच रहा था, मैं कहाँ जाऊँ, यही तो प्रॉब्लम है। मुझे शर्मिंदगी होती है तुम्हारी वजह से, सादिया ने कहा। ना कोई काम करते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम बेकार हो। फैजान ने कहा, करने का ही तो तुम्हें बताने आया हूँ। जब कर लोगे तब बता देना, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, सादिया ने कहा। वो फिर चली गई। फैजान की आंखों में पानी था, उसके पास कोई नहीं था जिससे वो बात कर सके। ड्रेसिंग टेबल से आवाज आई, दरवाजा बंद हो गया, बेड पर ज्वेलरी पड़ी हुई थी। फैजान वहां से चला गया। रेहाना बेगम अरमान के घर आई हुई थी वैसे ही मिलने के लिए, मगर सुबैदा बेगम अपना रोना लेकर बैठ गई थी। ये पायल ली है, चांदी की, मगर किसके लिए ली है समझ नहीं आ रहा, इतने पैसे भी वेस्ट कर दिए, अब तो चांदी भी सोने के रेट हो रही है। पायल का बिल रेहाना बेगम ने भी देखा था, वो भी सोचने लगी थी। तभी उसे हाल की विंडो से नूर और अरमान साथ में दिखाई देते हैं। नूर को जुबैदा बेगम ने बुलाया था। रेहाना बेगम ने भी बाहर की तरफ देखा। नूर जहां पर, रेहाना बेगम ने कहा, मैंने ही बुलाया है उसे, मुझे लगा उसे से पता होगा कि आजकल इसकी अरमान से दोस्ती है, कि इसने किसके लिए क्या खरीदा है। रेहाना बेगम परेशान होकर बोली, अब इसे क्या पता होगा। इसका मतलब नूर से था? नहीं नहीं, नूर को ही पता होगा, दोस्तों को सब पता होता है, सब राजदार होते हैं दोस्त एक दूसरे के, जोड़ा, जुबैदा बेगम बोली। तभी अरमान अंदर आता है। जुबैदा बेगम पायल का पाउच और बिल छुपा लेती हैं। नूर जो वहीं लॉन में रुकी हुई थी, उसने फैजान को एक साइड चबूतरे पर बैठे हुए देखा, जो कि बेहद उदास बैठा था। अरे आप ऐसे क्यों बैठे हैं, नूर ने फैजान को देखकर पूछा। मेरी मर्जी, फैजान ने उसे कहा। वो उसे क्या बता सकता था, वो रो रहा था क्योंकि फैजान की आंखों में आंसू थे। क्यों, क्या हुआ, नूर ने फिर कहा। क्या मैंने आपसे कभी पूछा, आप पढ़ने की बजाय इधर उधर टाइम क्यों गंवा रही हैं, फैजान ने कहा। उसका दिल कितना परेशान था वही जानता था। उसका कोई नहीं था, पैसे तो है, मगर उसकी सगी बहन उसकी बात तक सुनने को तैयार नहीं थी। वो ऑफिसर बनने जा रहा था ट्रेनिंग के लिए, मगर उसका दिल बेहद उदास था। क्या मतलब, नूर ने कहा। कोई किसी का सगा नहीं होता, फैजान ने कहा, और साथ ही उसने नूर के पैरों की तरफ देखा। वो नूर अरमान के साथ यूनिवर्सिटी से आई थी और उसके पैरों पर फिर समंदर की रेत लगी हुई थी, उन्होंने भी अपने पैर पीछे किए थे। आपको यकीन की कद्र करनी चाहिए जो आपके अब्बा ने आप पर किया है, इधर उधर घूमने की जगह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, वो नूर से बोला। नूर को उसकी बातों का बुरा नहीं लगा था, ना ही गुस्सा आया था, बल्कि वो अभी भी उसकी आंखों की तरफ देख रही थी, जो मैंने वो साफ कर चुका था। वो परेशान था, घबराया हुआ था, और वो महसूस कर सकती थी। आप ठीक तो हैं, बड़ी नरमी के साथ कहा उसने।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग जीतें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं, मुझे फॉलो करना याद रखें।